खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि उसका कलाम हमें ज़िंदगी के बहुत से हिस्सों के बारे में सिखाता है कि किस तरह चलना है, किस तरह बैठना है, किस तरह मसीही ईमान के बारे में जानना है। और आज हम जिस हिस्सा को सीखने के लिए जा रहे हैं पालूस के वसीला से, पालूस रसूल बदन के बारे में, जिसे कलीसिया कहा गया है, उसके बारे में वजाहत करते हुए कि बदन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह बदन का चलना क्या करता है, दूसरों के लिए बरकत का बायस बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये कांगो, इसकी एक टांग जो लोहे की टांग थी टूट गई, तो अब ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, इसे बजाने में मुश्किल होगी। वैसे ही इंसानी बदन में अगर हमारा पांव, हमारा हाथ या कोई और जिस्म का हिस्सा कमज़ोर हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो हम सही महसूस नहीं करते, हम सही तौर पर चल फिर नहीं सकते, हमारी तबीयत में, हमारी सेहत में, हमारे सोचने में फ़र्क आएगा। वैसे ही खुदा का बंदा पालूस यहाँ पर कहता है कलीसिया को लिखते हुए, इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका चार बाप, उसकी पहली आयत से छठी आयत तक। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतने और हिल्म के साथ, तहम्बुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुला के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से अमीर भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तीसरी आयत में हमने कल देखा, आप गुजरे याम में देखा था कि पालूस कहता है ईमानदारों से उन्हें सिखाते हुए कि इसी कोशिश में रहो, यही हमारी तवज्जो हो, यही हमारी तरफ से कोशिश हो कि रूह की जगानगी यानी कि रूह की रहनमाई में हम अतफाक में, हम मोहब्बत में, हम गठे रहें, जगानगी एक रहें, रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे, रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। और जब खुदावंद का बंदा पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया को ये बातें लिखता है और चौथी आयत में कहता है एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से अमीर भी एक ही है, तो यहां पर वो तीन बातों की तरफ इशारा करता है जो बदन से तल्लक रखती हैं, बदन, रूह और बुलाए जाने से अमीर। पालूस रसूल इफिसस की कलीसिया के रहने वाले उन लोगों को जो सामना कर रहे थे यूनानियों का, यूनानी खुदाओं का, जिसमें बहुत से देवी देवता पाए जाते थे। इस दुनिया में सात अजूबे हैं और उन सात अजूबों में से एक अजूबा इफिसस शहर में पाया जाता था, और वो अजूबा क्या था, इर्तमस देवी का मंदिर, ये खूबसूरत और हुसन की देवी कहा जाता था इसे। और उसका जो सात अजूबों में से एक अजूबा आज भी वहां पर मौजूद है कि उन्होंने उसका मंदिर बनाया जो बयान से बाहर है। सो पालूस रसूल उन सब को लिखते हुए कहता है कि रूह की यगानगी صلح کے بند سے بدھی رہے، ایمانداروں کو سکھاتے ہوئے کہ اگر تم آپس میں صلح یا اتفاق رکھو گے تو برکت ملے گی، اگر نہیں تو یہ ہمارے پاس صبح صبح خدا کی طرف سے یہ زندہ مثال ہے، اگر یہ کانگو ٹوٹی ہوئی ہے جیسا کہ ہے تو اپنے دوسرے دو ڈبوں سے الگ ہے۔ جب ہم میں بھی مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے صلح نہیں، تو صلح وہ کس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اس بات کے بارے میں کہ ایک ہی بدن ہے۔ وہ ایک ہی بدن کا جب لفظ استعمال کرتا ہے پالوس رسول، تو کہتا ہے کہ مسیح کا بدن ایک ہی ہے اور سب اس میں ہیں۔ جو کوئی یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیح کا بدن ہے، کلیسیا ہے، مسیح کا چرچ جسے کہا گیا ہے، ایک ہی بدن ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں ہمیں بہت سے مختصر حوالہ جات ملتے ہیں کہ اگر بدن میں، پالوس رسول کہتا ہے میرے ساتھ نکالیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب، وہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول کلیسیا میں پائے جانے اس تصاد یا نا اتفاقی کی بابت لکھتے ہوئے کہتا ہے، روح ایک ہی ہے لیکن نعمتیں طرح طرح کی ہیں، روح القدس کی قدرت سب کے لیے ایک جیسی ہے لیکن خدمتیں طرح طرح کی ہیں، ہم سب بدن تو ہیں لیکن ہم سب کی ذمہ داری طرح طرح کی ہے۔ اور یہاں پر وہ پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 12 آیت سے یوں کہتا ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء دو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ سادہ لفظوں میں کہ بدن ہے، اس بدن میں بہت سے حصے ہیں جس میں پاؤں ہیں، سر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، دل ہے، گردے ہیں، کمر ہے، گھٹنے ہیں، اور وہ کہتا ہے سب مل کر ایک بدن بنتے ہیں، ویسے مسیح بھی ہے۔ اور 13 آیت میں، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ ایک ہی بدن، ایک ہی روح، اور ایک ہی روح کے وسیلہ سے ہم سب کیا ہوئے ہیں؟ مسیح کا بدن بنے ہیں، اور روح القدس کا بپتسمہ ہم سب کو ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں۔ عضو سے مراد یعنی کہ حصہ، اعضاء سے مراد یعنی کہ حصے، جس میں ہاتھ، پاؤں، سر، زبان، کان، آنکھیں اور گھٹنے یا دوسری باتیں جسم کے حصے آ جاتے ہیں۔ جو 14 آیت میں کہتا ہے چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں، اور مثال کے طور پر آگے وہ یہ کہتا ہے، اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول بدن کی چیزوں کو گناتے ہوئے کہتا ہے، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ ایمانداروں کی وہ حالت کو بیان کرتا ہے کہ اگر کہے کہ ایک بندہ کہ جی میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میں مسیح کے بدن کا حصہ نہیں، اور جس کام کے لیے، جس بلاوے کے لیے میں بلایا گیا ہوں اسے مجھے کرنا لازم نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ غلطی پر ہے۔ اگر ہمارا ہاتھ پاؤں کی جگہ کام کرنا شروع کر دے تو ہم بے ڈھنگے سے ہو جائیں گے، اگر ہماری آنکھوں کی جگہ ہمارا منہ ہو تو ہم کوئی اور ہی مخلوق نظر آئیں گے، اگر ہمارے پاؤں کی جگہ ہمارا سر ہو اور سر کی جگہ پاؤں ہو تو ہم کوئی اور ہی تیسری چوتھی مخلوق نظر آئیں گے۔ सो पालूस रसूल कहता है अगर पांव कहे, अगर कान कहे और अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता। सो जब वो इस जिस्म के हिस्सों के बारे में बयान करता है कि कान हो चूँकि आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो उस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। सादा लफ्ज़ों में पालूस क्या कहता है कि बदन में बहुत से हिस्से हैं, वैसे ही कलीसिया में किसी को हाथ, किसी को पांव, किसी को मुंह, किसी को सर, किसी को आंखें और किसी को मुख्तलिफ दूसरी खिदमात दी गई है। इसलिए वो कहता है कि हर कोई अपनी अपनी खिदमत को जाने, हर कोई अपनी अपनी खिदमत को जाने। और आप इस पूरे बाब को पढ़ सकते हैं और इसमें तमाम बातें पालूस रसूल बदन के बारे में कहता है। और आगे चलकर वो कहता है 27वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर वो कहता है इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अजा हो। इसी तरह वो कहता है कलीसिया को तुम सब मिलकर क्या हो, हिस्सा बा हिस्सा, फर्दन बा फर्दन क्या हो, मसीह के बदन के अजा हो। और इसीलिए वो कहता है खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्सों को मुकरर किया। मैं नहीं चाहता कि आप समझे कि पादरी साहब लगता है हमको जिस्म के हिस्से सिखाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर पालूस का जो कहने का मतलब है जिस्म के हिस्सों को बयान करने का, उसके पीछे मकसद यही है कि हर एक हिस्सा अपने काम को जाने। मिसाल के तौर पर चर्च में पास्टर है, उसकी खिदमत क्या है, दरियां बिछाना? हरगिज नहीं। बेशक बसात हो सकता है लेकिन उसका काम क्या है, कलाम सुनाना। डीकन का काम क्या है, कलीसिया की रहनुमाई करना, उनकी मदद करना। इंतजामिया का काम क्या है, इंतजाम करना। प्रस्तारों का काम क्या है, प्रस्तुत करना। कलीसिया का काम क्या है, चर्च की तमाम बदन की मिलकर हिफाजत करना। रूह कुद्दस का काम क्या है, हमारी मदद करना। यीशु मसीह का काम क्या था, यीशु मसीह, खुदा पाक रूह, खुदा बाप सब क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अगर उनमें नातफाकी हो तो कभी कोई अच्छा काम हो सकता है, हरगिज नहीं। इसलिए उनमें नातफाकी कभी नहीं आती। सो पालूस रसूल कहता है और खुदा की कलीसिया में अगर अलग अलग शख्स मुकरर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले, क्या सब रसूल हैं, क्या सब नबी हैं, क्या सब उस्ताद हैं, क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं, क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई है, क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं, क्या सब तर्जमा करते हैं। तुम बड़ी से बड़ी नेहमत की आरजू रखो लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीके में तुम्हें और भी सबसे उम्दा तरीके में तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। और आगे चलकर वो कहेगा 13वें बात में, मोहब्बत रखो। मोहब्बत होगा तो इत्तेफाक होगी। किसी भी घर में, किसी भी गिरजे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी जिंदगी के इलाका में, शादी में, अगर मोहब्बत नहीं आपस में तो क्या है, वो बेकार है। दौलत कितनी मर्जी हो, खुदावन का बंदा पालूस रसूल इमसाल, खुदावन का बंदा पालूस रसूल, खुदावन का बंदा सुलेमान इमसाल की किताब में बार बार कहता है कि अगर घर खाने पीने से भरा हो और उसमें मोहब्बत और इत्तेफाक ना हो तो वो घर कायम नहीं रहेगा। सो इसीलिए पालूस रसूल क्रंथस की कलीसिया को लिखते हुए और जैसे हम सीख रहे हैं इफसस की कलीसिया को, इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। और वो कहता है एक ही बदन है, एक ही बदन है, इफिसस की कलीसिया में बहुत से दूसरी क्या कह सकते हैं तफरके और फिरके पाए जाते थे, जिसमें सबसे बड़ा था वो क्या, इर्तमिस देवी, जिसकी लोग पूजा करते थे, इबादत करते थे, उसे हुसन की देवी मानते थे, उसे दौलत और रुपया पैसा देने वाली और दूसरी बहुत सी बातों के लिए उसे पुकारते थे। तो पालूस कहता एक ही बदन है, एक ही रूह है जो खुदा का रूह है, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपना अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। सो हम सब मुख्तलिफ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन हम सबको किसी ना किसी खिदमत के लिए बुलाया गया है और हमें अपनी अपनी खिदमत को जानने की ज़रूरत है कि मैं हाथ हूँ या पाँव या आँखें या मुंह या फिर कमर का वो पट्टा जो सारे बदन को संभालता है, या फिर मैं दिमाग हूँ। सो हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में ये सवाल करने की ज़रूरत है कि मुझे कौन सी खिदमत मिली है, क्योंकि मैं मसीह का बदन हूँ। अगर हम कहें कि हम मसीह का बदन हैं और कोई काम नहीं मिला, तो फिर हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम सबको कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है और पलूस कहता है एक ही बदन है, एक ही रूह है, एक ही उम्मीद है और उसके लिए तुम बुलाए गए हो। सो आगे चलकर हम देखेंगे तरह तरह की नेमतों के बारे में कि पालूस रसूल सिखाता है कि वो नेमतें, वो बरकतें कौन सी है, ताकि जान सकें कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। आए हम खुदा के जुड़ चुकें और आज के दिन में खुदावन से उसकी रहनुमाई चाहें और उससे पूछें, क्योंकि वो मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता, क्योंकि उसने खुद वादा किया है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। उसने खुद कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उसने कहा है कि जो कोई मांगता है शक ना करे उसे मिल जाएगा। सो हम मांगेंगे उससे, खुदावन खुदा से, कि हमारी रहनुमाई कर कि हमारी खिदमत क्या है, ताकि हम उस खिदमत को कलीसिया का बदन होते हुए सरंजाम, कलीसियाई बदन होते हुए सरंजाम देने वाले बने, मसीह का बदन होते हुए ज़मीन पर करने वाले बने। खुदा बाप हम सब की रहनुमाई कर। तेरा बंदा पालूस रसूल बड़े वाजिया तौर पर कह देता है कि आँख, हाथ, पाँव और उंगलियाँ और दूसरे तमाम अज़्वा अगर एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं तो बदन में अबतरी और फसाद होगा। और पालूस रसूल के वसीला से तूने खुदावन उनको सिखाया, हम सबको भी सिखा कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को, अपनी अपनी खिदमत को, अपने अपने खुदावन खुदा काम को जाने और उसे ऐसे सर अंजाम दें जैसे तू चाहता है। और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले, उसी के पाक और मुकद्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।